प्रेयर्स। कल रात गाए थे ना हमने, गौरंग बोली थे, अभी आपने गाया था ना। सो वी आर ऑन चैतन्य चरितमृत मध्य लीला थर्ड चैप्टर वर्स 98। 220 के करीब तो वर्ड्स हैं इस चैप्टर में, लॉन्ग चैप्टर्स। सो वी डू दिस जस्ट लाइक द भागवतम। आपनार सम मोरे करीबार तरे, झूठा दिले विप्रा बलि भय न करिले। इज देयर अ बेटर ट्यून? समबडी नोज, यू नो बेटर ट्यून? यस, आपनार सम मोरे करीबार तरे, झूठा दिल विप्रबलि भय न करिले। आपनार सम मोरे करीबार तरे, झूठा दिले विप्रबलि भय न करिले। आपनार सम मोरे करीबार तरे, झूठ दिले विप्रबलि भय न करिले। आपनार सम मोरे करीबार तरे, झूठ दिले विप्रबलि भय न करिले। माताजी, आपनार सम मोरे करीबार तरे, न करिले। आपनारापन मोरे करिबार तरे, अनुवाद ट्रांसलेशन। तुमने मुझे भी अपने समान पागल बनाने के लिए मेरे ऊपर झूठन फेंका है, तुम्हें इसका भी डर नहीं हुआ कि मैं एक ब्राह्मण हूं? तात्पर्य, बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वदंत स्वामी श्री प्रभुपाद की। आपनारसम शब्द इस बात का सूचक है कि अद्वैत आचार्य अपने आप को स्मार्ट ब्राह्मण मानते हैं और नित्यानंद प्रभु को शुद्ध वैष्णव। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपना झूठन इसलिए दिया जिससे कि वे उन्हीं के समान पद को प्राप्त हों और शुद्ध वैष्णव या परम हंस बन सके। अद्वैताचार्य का कथन इस बात का सूचक है कि परमहंस वैष्णव दिव्य पद पर आसीन होता है, शुद्ध वैष्णव पर स्मार्ट ब्राह्मणों के विधि विधान लागू नहीं होते। इसलिए अद्वैताचार्य ने कहा, आपनारसम मोरे कारिबार तारे, अपने ही बराबर करने के लिए शुद्ध वैष्णव या परमहंस पद को प्राप्त व्यक्ति झूठन अर्थात महाप्रसाद को आध्यात्मिक मानता है। वह उसे भौतिक या इंद्रिय तृप्ति करने वाला नहीं मानता। वह महाप्रसाद को सामान्य दाल भात नहीं अपितु आध्यात्मिक वस्तु मानता है। शुद्ध वैष्णव के झूठन की बात तो और ही है। तो महामहा यही तक का प्रश्न, यहां तक कि यह प्रश्न उठता है कि वास्तव में ऐसा महाप्रसाद खाने से मनुष्य के सारे सांसारिक कलमश से मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। थैंक यू। तो यहां जो लीला चल रही है ये इसको कहते हैं जोकिंग या सरकास्टिक। कैसे कहते हैं हिंदी में सरकास्टिक? व्यंग। व्यंग आई एम नॉट श्योर, व्यंग इज लाइक जोकिंग, सरकाज्म, देर शुड बी अ वर्ड ऑफ सरकाज्म, नो इन हिंदी सरकाज्म इज नॉट, ओके। तो क्या हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास लेके आए और वृंदावन जाने की कोशिश कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु उनको बताते हैं कि अरे वृंदावन बस आ गए समझो, ये रही यमुना, गंगा जी को दिखा के कह रहे, ये रही यमुना, ऑलमोस्ट आ गए वृंदावन, बस चलो थोड़ा और अभी पहुंच जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यमुना आ गई यमुना, ओके कूद गए उसमें अभी बदलने के लिए कोपिन भी नहीं है और वहां से चले। पूछा कि क्या, जब पता चल गया चैतन्य महाप्रभु को कि ये तो यमुना नहीं तो गंगा है, क्यों मुझे झूठ बोला, फर्क क्या है गंगा यमुना, ये उस तरफ से गंगा उस तरफ से यमुना है। वास्तव में इससे पहले के गंगा जी बंगाल तक पहुंचती है, यमुना जी उसके अंदर मिक्स ही हो जाती है ना, त्रिवेणी संगम पे गंगा जी के अंदर यमुना जी मिक्स हो गई, तो उसके आगे जो रिवर निकली उसके अंदर यमुना जी है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है ही। तू कह रहे मैंने झूठ नहीं बोला इसमें यमुना जी आगे देखा वो ये अद्वैताचार्य नाव में बैठे आ रहे हैं. एक्चुअली दैट हैपन्ड फर्स्ट. पहले चैतन्य महाप्रभु ने देखा अद्वैताचार्य नाव में बैठे आ रहे हैं. नाव में बैठे आ रहे हैं अद्वैताचार्य, ये यमुना में क्या कर रहे हैं? यमुना नहीं, ये तो गंगा ही होगी. नित्यानंद की शामत आई. नहीं नहीं, ये यमुना भी तो है. मैंने कुछ झूठ नहीं बोला. ईस्ट साइड में वहां वाला जो ईस्ट साइड का जो बैंक है वो गंगा है. ये वेस्ट साइड का जो बैंक है ये वाला किनारा ये यमुना है. इसी में नहा लो. तो अद्वैताचार्य दोनों को और साथ में और भी दो डिवोटीज थे, क्या नाम उनका, हरिदास ठाकुर एंड, इनके साथ में चार डिवोटी ट्रेवल कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर एंड मुकुंद, लॉर्ड नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु, मुकुंद एंड हरिदास ठाकुर. तो वो चारों को अपने घर ले जाते हैं कि चलो, बिकॉज दे एक्चुअली दे ट्राइंग टू टेल लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु दैट वी आर रीचिंग वृंदावन, बट दे आर ओनली रीचिंग शांतिपुर विच इज नॉट वेरी फार. बहुत दूर नहीं है मायापुर से शांतिपुर, कितना दूर है, लाइक यहां से रोहिणी का मंदिर. इतना ही दूर है, बल्कि और थोड़ा कम ही होगा. तो लेकिन ये शांतिपुर जो है नवद्वीप से बाहर है, नवद्वीप के एरिया में नहीं आता. वेरी क्लोज है लेकिन फिर भी नवद्वीप में नहीं आता, नवद्वीप से बाहर. नवद्वीप इज अंतरद्वीप इन द मिडल एंड देन एट अदर पेटल्स, चारों तरफ आठ. और वो जैसे कमल का फूल है उसका एक सेंटर है और उसके चारों तरफ आठ कमल के पत्ते हैं, इस तरह से नवद्वीप है. तो शांतिपुर जस्ट आउटसाइड है. वास्तव में अद्वैताचार्य शांतिपुर के रहने वाले नहीं है. अद्वैताचार्य कहीं दूर गांव में, दूर गांव नहीं पास गांव में कहीं दूसरी जगह रहते थे. कौन जानता है उनके जन्म का नाम. अद्वैताचार्य तो उनका इनिशिएटेड नाम था जो माधवेंद्रपुरी ने दिया. माधवेंद्रपुरी ने कहा कि तुम ऐसे शिष्य हो जो अपने गुरु को नाम देने आता है, कि तुम्हारे नाम से तो मेरा नाम कल को जाना जाएगा. तुम इतने बड़े शिष्य हो. और उनको अद्वैताचार्य का नाम दिया. तो इनका बचपन का नाम था कमलाक्ष. और घर का नाम, घर का नाम मंगला. घर में मां बाप मंगल बुलाते थे, मंगला. कमलाक्ष तो थोड़ा मुश्किल नाम है ना, घर में बार बार बोलने के लिए कमलाक्ष कमलाक्ष, बट नाम उनका कमलाक्ष था. उनकी पिताजी का नाम था कुबेर, कुबेर कुबेर आचार्य कुछ ऐसे, कुबेर पंडित. बट कुबेर पंडित जो है वास्तव में जो कुबेर हैं उनके रिप्रेजेंटेशन है. और उनकी माता का नाम था नभा. तो बचपन में जब ये कहीं दूसरे गांव में रहते थे तो वहां इनका जन्म हुआ. जब पांच साल की उम्र हो गई तो पाठशाला जाना शुरू किया. पाठशाला में वो बड़े वाले पाठशाला में जाते थे जहां राजा के भी बच्चे वहीं पढ़ने आते थे. तो वहां राजकुमार से उनकी दोस्ती हो गई. तो जब दुर्गा पूजा का समय आया तो सब लोगों ने दुर्गा देवी को प्रणाम किया और कमलाक्ष ने दुर्गा देवी को प्रणाम नहीं किया. तो और किसी ने तो नोटिस नहीं किया, लेकिन वो जो राजकुमार था वो उनका दोस्त था तो उसने नोटिस किया. उसने कहा लगता भूल गया होगा, ए चल, जैसे बच्चे करते हैं, चल प्रणाम कर. कि मैं दुर्गा देवी को प्रणाम करूं, मैं नहीं करूंगा। अच्छा तू दुर्गा देवी को प्रणाम नहीं, मैं तेरी शिकायत करता हूं। बच्चे तो ऐसा करते हैं ना कि ये इसने चाहे फ्रेंड भी है उसकी चुगली करने जाते हैं, तो जाके उसने जो मिला उसको बताया दुर्गा देवी को प्रणाम नहीं करता, देखो कितना बैड बॉय है, डांटो इसको। तो बात पहुंचते पहुंचते राजा तक पहुंच गई, क्योंकि राजकुमार की बात राजा तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होता। तो राजा ने कहा अच्छा ये तो अच्छी बात नहीं है कि ये बच्चा 5 साल की उम्र में पाठशाला में ये क्या सीख रहा है, कुछ अच्छा नहीं सीख रहा है, ये तो दुर्गा देवी को प्रणाम करना ही चाहिए। ठीक है मैं बात करूंगा, बुलाओ कुबेर पंडित को, उसका ही लड़का है ना, हाँ बुलाओ उसको। ठीक है कुबेर पंडित को बुलाया गया कि देख तेरा पुत्र दुर्गा देवी को प्रणाम करने से रिफ्यूज कर रहा है, ये क्या कुछ अच्छी शिक्षा दो घर में जाके अपने पुत्र को के दुर्गा देवी का रेस्पेक्ट करे, ये तो धार्मिक वो सेलिब्रेशन है, क्या कहते हैं हिंदी में, धार्मिक समारोह है, उसमें जब सब प्रणाम कर रहे हैं उसको भी प्रणाम करना चाहिए, ये क्या जिद है। तो कुबेर पंडित ने कहा आई एम वेरी सॉरी, मुझे तो कुछ पता नहीं था, माफ करना मुझे, मैं घर जाके अपने लड़के को समझाता हूं। घर गए उन्होंने कमलाक्ष को समझाया दुर्गा देवी को प्रणाम, अरे मैं क्यों दुर्गा देवी को प्रणाम, उनको लगा ये मेरे हाथ नहीं आने वाला, राजा को भी बुला लिया, सबने मिलके उनको समझाया दुर्गा देवी को प्रणाम करना है, जरूरी है, यू हैव टू लर्न दिस, बी ए गुड बॉय। अच्छा ठीक है अगर मैं प्रणाम करूंगा दुर्गा देवी को तो उसका जो परिणाम होगा वो आप लोग भुगत लोगे, कि हाँ हम भुगत लेंगे, देखो इसको कितना छोटा सा नादान बच्चा क्या अपने आप को समझ रहा है, इतनी बात कर रहा है कि उसका जो परिणाम होगा वो हम भुगत लेंगे, हाँ हम भुगत लेंगे, हम ही भुगतेंगे और नहीं तो क्या, तू 5 साल का बच्चा भुगतेगा। ठीक है आप कहते हो भुगत सकते हैं तो भुगतो, आप कहो मैं जाके प्रणाम करता हूं दुर्गा देवी को, जाके कमलाक्ष ने प्रणाम कर दिया, प्रणाम करते ही दुर्गा देवी की पूरी मूर्ति एक्सप्लोड हो गई, टुकड़े टुकड़े सारे मंदिर में सब जगह चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़े दुर्गा देवी के मूर्ति के, बिकॉज दुर्गा देवी जो उसके अंदर निवास कर रही थी वो छोड़ गई। तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित, और साथ में कमलाक्ष ने अपने पिता कुबेर पंडित को बताया कि अब इस गांव में रहना सेफ नहीं है, अब भागो यहां से, क्योंकि ये दुर्गा अब इस राजा के ऊपर प्रकोप करेगी, मेरे से इसने जबरदस्ती प्रणाम करवाया है। राजा के ऊपर प्रकोप करेगी, हम बीच में जो सारे प्रजा है, राजा के ऊपर प्रकोप आएगा तो प्रजा तो बीच में पिसेगी, अब छोड़ो यहां से चलो, ये जगह अच्छी नहीं रहने की। तो आके शांतिपुर में बस गए। तो जो हमारा मायापुर का फेस्टिवल होता है तो हमेशा एक दिन उसमें शांतिपुर फेस्टिवल होता है, वहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं और हम वहां जाके फूड फॉर लाइफ करते हैं। कितने लोगों ने देखा है? ऑलमोस्ट सब ने, कभी अभी भी बहुत सोने ही नहीं देखा। जैसे सड़क के किनारे कभी वो बना देते हैं, गाय वैसे आती जाती हैं वहां पानी पी लें, घोड़े पानी पी लें, इतने बड़े बड़े पॉट्स में वहां हौदी, इतने बड़े बड़े हौदी वहां भरे बने हुए हैं खिचड़ी बना के उसमें डालने के लिए, और जो खिचड़ी बनाने की जो कढ़ाई है उसमें मेरे ख्याल से अगर मैं पूरा लेट जाऊं तो अभी वो खत्म नहीं हो गया, तीन चार लोग तो हम लेट जाएंगे और वो कढ़ाई खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी कढ़ाई है, मैं इतने हाथ दोनों फैला नहीं सकता हूं जितनी बड़ी कढ़ाई है। उसमें से निकाल निकाल के फिर वो हौदी बनाई हुई है, उसमें हम लोग भरते हैं। मुझे लगता है पहले दिन से ही जाके डिवोटीज वहां कुकिंग शुरू कर देते हैं, तो हम लोग सुबह को पहुंचते हैं तो वहां इतना खीर भरा हुआ है, लेकिन वहां लोग भी कितने, करीब 1,00,000 लोग आते होंगे, कितने 60-70,000 लोग, या मे बी लिटिल बिट ऑफ एग्जेजरेशन, लेकिन 60-70,000 लुक्स लाइक मिनिमम। अभी 2-3 साल पहले गुरु महाराज के साथ हम गए थे वहां, तो साथ साथ में खूब खिचड़ी बाटी गुरु महाराज के, धोती में भी, कुर्ते में भी और खेत में भी, सब जगह। इट्स अ लॉट ऑफ फन। तो वहां पे आज भी अद्वैताचार्य का वो स्थान है, वो घर है, जहां के जहां पे ये लीला हो रही है कि गंगा जी से अद्वैताचार्य ये चारों डिवोटीज को अपने घर ले आए। पहले अद्वैताचार्य ने सरकास्टिक कमेंट शुरू करे। अद्वैताचार्य ने कहा कि मेरे घर में थोड़ा सा मामूली सा राइस है, बस मैं आप लोगों को खिलाना चाहता हूं। और घर में लेके गए तो वहां 56 भोग का भी बाप बना हुआ था। जितनी रेसिपी बुक में रेसिपी थी सब बनी हुई थी वहां। तो दोनों लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु तो पहले बोले, अरे मैंने तो सन्यास लिया है, तुम लोग ये इतना खाना, तो मैं सन्यासी हूं, मैं इतना नहीं खा सकता, ये सन्यास के लिए अच्छा नहीं है। तुमने क्या समझा, मैं कोई कर्मी हूं, कोई भोगी हूं, इतना प्रसाद? तो अद्वैताचार्य कहते हैं, अरे हम जानते हैं आपने सन्यास क्यों लिया, ये खाली दुनिया को दिखाने का दिखावा है, आप तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हो, भगवान हो, चाहे सन्यास लो चाहे कुछ भी लो, लोग रहोगे तो भगवान ही ना। तो भगवान के लिए तो ये सब भोग ऐश्वर्य होता ही है। तो नित्यानंद बोले, अरे ये तो बहुत कम है, इतने से मेरा क्या होगा, दाढ़ भी गीली नहीं होगी, और लाओ। क्या तुम लोग मेरा इंसल्ट कर रहे हो, मुझे बुलाया खाने के लिए और इतना कम खाना, कुछ अच्छी तरह से बनाओ, इसमें तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। एनफ फूड देयर टू फीड 200 पीपल, इससे तो मेरे लिए एनफ नहीं है। कुछ अच्छा तो बनाओ। तो ये ऐसे लीला चल रही है कि जो बात सच है वो बोली नहीं जा रही, और जो सच नहीं है वो बोली जा रही है। ये बस थोड़ा सा राइस है मेरे घर में, थोड़ा आके आप लोग खा लो। तो थोड़ा थोड़ा खा लिया है, और अब ये नित्यानंद प्रभु ने चावल उठा के अद्वैताचार्य पे फेंक भी दिया है। तो अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि तुम्हें इतना भी समझ नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं भाई, मेरे ऊपर तुम झूठा फेंक रहे हो, अपना झूठा खाया हुआ भोजन एक ब्राह्मण के ऊपर फेंक रहे हो, तुम्हें भय नहीं है कोई? अद्वैताचार्य को अच्छी तरह से पता है कि नित्यानंद प्रभु सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड है, लेकिन फिर भी वो मजाक कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ब्राह्मण जन्म से कुछ नहीं होता, किससे होता है? गुण और कर्म से, जन्म से कुछ नहीं होता। फिर भी वो अपना जन्म की बात करे, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और तुम मेरे ऊपर झूठा फेंक रहे, कुछ भय नहीं है? डरा रहे नित्यानंद प्रभु को। तो ये लीला ऐसे चल रही है। एक बार क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया तो अद्वैताचार्य को ये लगने लगा कि हां ये जो सृष्टि है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कुछ ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि भगवान का अवतार हो गया। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ कैसे कंफर्म होगा? तो अपनी पत्नी सीता को भेजा, उनकी पत्नी का नाम था सीता देवी, कि जाओ वहां सची के घर देख के आओ, वहां संतान हुई है कि नहीं, और अगर हुई भी है तो वही भगवान है क्या, ये सब जाके कंफर्म करके आओ। तो सीता देवी वहां उपहार ले लेके वहां पहुंची कि ये लो, और देखा शिशु के दर्शन किए और तेज नजर आया उनके चेहरे में कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी का देखे। उनके पैर चेक किए नीचे से, वो सारे अंकित जो चिन्ह होते हैं वो सब चैतन्य महाप्रभु के पैर में अंकित हैं। खुशी खुशी भाग के वापस शांतिपुर और जाके बताया। तो और बचपन की लीला में अद्वैताचार्य एक्चुअली जो चैतन्य महाप्रभु के भाई थे विश्वरूप, विश्वरूप विश्वरूप के टीचर थे। तो जब विश्वरूप के घर में शादी की बात चल रही थी कि ये लड़कियों के प्रपोजल हैं तो कुछ चूज करके कल से इसकी शादी का कुछ अरेंजमेंट करना है, उसी रात वो घर से भाग गए और कहीं जाके संन्यास ले लिया। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु भी अद्वैताचार्य से पढ़ा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, सची देवी को, माता सची को ये समझ में आने लगा कि मेरा जो पुत्र था विश्वरूप वो ये अद्वैताचार्य की शिक्षा की वजह से भाग गया, यही था टीचर उसका, जो कुछ सिखाया गलत इसी ने सिखाया होगा। जैसा कि ब्लेम यहां आई एम श्योर बड़े बड़े डिवोटीज को आता होगा कभी कभार कि यही है, इसी ने किया जो कुछ किया। तो माता सची ने, ऐसे लेडीज की आदत होती है कोई चीज बुरी लग जाए समझ में आ जाए तो जाके इधर उधर कहीं कुएं पे तो कहीं नदी पे जो कुछ मिला उसको बताता है, ये अद्वैताचार्य ये बहुत बुरा है, इसका नाम अद्वैत नहीं होना चाहिए, इसका नाम द्वैता होना चाहिए। क्या अद्वैत का क्या मतलब है? अद्वैत और द्वैत, अद्वैत इज द फिलॉसफी ऑफ वन विद गॉड, वी आर वन, बट इन अ डिफरेंट रेफरेंस अद्वैत नेम इज गिवन, द्वैत इज एक्चुअली बेटर बिकॉज वी आर द्वैत, लेकिन दिस नेम इज गिवन इन अ डिफरेंट रेफरेंस। तो इसलिए जब उन्होंने ऐसा कहा और चैतन्य महाप्रभु को पता चला, चैतन्य महाप्रभु ने डंडा उठा लिया और भागे अपनी माता को मारने के लिए। सब लोगों ने रोका, अरे अपनी माता को भी कोई मारता है? ए, नहीं, वो मारने के योग्य है। I am going to beat her blue and black. क्यों? क्या हुआ? उसने अद्वैत आचार्य का अपमान किया है. This is one of the examples we use for the first offense. कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मां को भी जो पहला अपराध है वैष्णव की निंदा उसके लिए क्षमा नहीं किया. उन्होंने कहा अगर सारे गांव वालों तुम ये चाहते हो कि मैं माता को नहीं मारूं तो अभी जाके अद्वैत आचार्य को बुला के लाओ, मेरी मां से उनके चरणों में पड़ के माफी मंगवाओ, वो माफ कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगा. ये लीला है भगवान की. अब ऐसा नहीं कि कल को सब लोग अपनी अपनी मां के ऊपर डंडा लेके चढ़ जाएं कि क्या किया कैसे किया है, तो चैतन्य महाप्रभु जी कह गए कल लेक्चर में कि चैतन्य महाप्रभु ने किया ये ठीक था. ऐसा नहीं है, ये केवल भगवान की लीला है. कोई अपनी मां के ऊपर डंडा नहीं उठाना. तो अद्वैत आचार्य हो सची देवी द मदर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, एंड मैं उनको अपने चरणों में नहीं गिरने दे सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि मदर सची देवी को मैं अपने चरणों में गिर के माफी मांगने दूंगा. नहीं नहीं नहीं, मैंने माफ किया, बस हो गया, दैट्स इट्स फाइन, इट्स ओके. तो ये लीला है भगवान की. आगे चल के क्या हुआ? अद्वैत आचार्य ऐसा चाहते थे मन से. अद्वैत आचार्य की उम्र चैतन्य महाप्रभु के मटेरियली दादा से भी ज्यादा थी, लेकिन अद्वैत आचार्य के भगवान थे वो. तो वो ये चाहते थे कि किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु कुछ ऐसा करें जिससे कि मुझे बच्चा या डिसाइपल या उनका जूनियर बनने को मिले और उनको मैं ऊपर का स्थान दे सकूं. लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी ये बात नहीं मानते. चैतन्य महाप्रभु हमेशा यही कहते, नहीं नहीं नहीं, यू आर माई टीचर, यू आर लाइक माई स्पिरिचुअल मास्टर, यू आर दिस, यू आर दैट. उसको हमेशा उनको अपने से बहुत ऊपर रखते थे. तो एक बार अद्वैत आचार्य ने एक युक्ति निकाली कि अगर जो मुझे जो चाहिए वो मुझे तभी मिलेगा जब मैं कुछ गड़बड़ करूंगा. तो उन्होंने अपने स्कूल में बाहर साइन लगवा दिया, पतंजलि योगा सीखने के लिए यहां आए. सबको सिखाना शुरू कर दिया. भगवत सेवा में कुछ नहीं रखा, आत्मा को परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए. ब्रह्म ज्योति सबसे बड़ी चीज है. सब उल्टा उल्टा प्रचार शुरू कर दिया कि किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु को पता लगे. तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता लगा तो गए एज अ स्पाई, पीछे छुप के खड़े रहे कि देखूं क्या क्या प्रचार कर रहा है. और अद्वैत आचार्य को मालूम है कि वो वहां खंभे के पीछे चैतन्य महाप्रभु छुपे हुए खड़े हैं. तो किसी आगे बैठे हुए व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, क्या बेटर है, भक्ति के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना? तो अद्वैत आचार्य, उनके पास माइक तो था नहीं जैसा मेरे पास है, और उन्हें पता है कि चैतन्य महाप्रभु वहां दूर खड़े हैं, बहुत जोर से चिल्लाए, हा हा, भक्ति में कुछ नहीं रखा, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहिए. छोड़ दो भक्ति, चैतन्य महाप्रभु निकल के आए, अच्छा यह प्रचार करना है। और उठाया अद्वैत आचार्य को व्यास आसन से और फेंक दिया पीछे, उठा के पटक दिया उनको। ये क्या, कल तक तो चिल्ला चिल्ला के मेरे से कह रहा था अवतार लो अवतार लो अवतार लो, अब मैं यहां अवतार लिया, मैं यहां आया और इस तरीके की फिलॉसफी का यहां प्रचार कर, इसीलिए मुझे बुलाया यहां। तो अब अद्वैत आचार्य चिल्ला, यही मुझे चाहिए था। That's what I want. That's what I was waiting for. That you take the senior position and chastise me. तो उस दिन से इनका बराबर हो गया। टाइम हो गया? कोई प्रश्न है किसी का? अभी और बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा। सम ऑफ दीज लीलाज आर फ्रॉम चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में ये लीला नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो है, हाँ चेस्टाइज, उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उनको चेस्टाइजमेंट मिले? क्योंकि वो ये चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है और मैं एक तरह से भक्त हूं, भगवान अपना रोल करना शुरू करें और मुझे अपने नीचे लेना शुरू करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनको अपने से कहीं ज्यादा सीनियर वैष्णव मान के उनको हमेशा ऊपर रखते थे, अपने आप को उनका जूनियर रखते थे। ही वॉन्टेड टू हैव द चेंज, कि मुझे किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ये मान लें कि वो मेरे से सुपीरियर हैं, क्योंकि वो है ही, मैं चाहता हूं कि किसी तरह से मान ले कि वो मेरे से सुपीरियर हैं। तो जब मैं गलती करूंगा वो आके मुझे डांटेंगे सुधारेंगे, तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि वो मेरे से सुपीरियर हैं। मैं तो गलती करता हूं, जब मैं गलती करता हूं तो ये मुझे डांटते हैं, तो ये सुपीरियर हैं, मैं तो जूनियर हूं, मैं तो छोटा हूं, ऐसा हो जाता है। एनी अदर क्वेश्चन? हो गया, समझ में आ गया?
ब्राह्मण के बेटे को क्या क्या कहें? ब्राह्मण जाति के क्या कहें? ब्राह्मण के,
हाँ कह सकते हैं, बट यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर अ ब्राह्मण जस्ट बाय बर्थ। यू हैव टू हैव द गुना एंड कर्मा ऑफ द ब्राह्मण टू बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई योर सेल्फ और क्लेम योर सेल्फ टू बी अ ब्राह्मण। सॉरी, हिंदी में बताओ। केवल जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, मैं अपने आप को केवल जन्म से ब्राह्मण की पदवी नहीं दे सकता हूं। अगर गुण और कर्म भी ब्राह्मण के हैं तो मैं कह सकता हूं कि हां मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन केवल जन्म से अगर मैं कहूं कि नहीं मैं तो ब्राह्मण हूं क्योंकि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, वो एनफ नहीं। लेकिन अगर जो ब्राह्मण परिवार में जन्म के साथ साथ गुण और कर्म भी ब्राह्मण के हैं, देन ब्राह्मण। बट ना ऑफ कोर्स वी वांट टू रेज आवर सेल्व्स टू गो, ट्राई टू रेज आवर सेल्व्स टू गो बेस्ट ऑफ ऑल। यस,
हरे कृष्ण। आपने बताया कि महाप्रसाद को नॉर्मल चावल भात की तरह,
या
तो कैसे हम महाप्रसाद को सही चेतना में इसको ऑनर करें, क्या क्या प्रकाशन करें? हम भूल जाते हैं।
या वेरी गुड पॉइंट। इसमें प्रॉपर्ट में श्रील प्रभुपाद ने लिया है कि जो महाप्रसाद है उसको साधारण दाल भात समझना अपराध है। तो हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके महाप्रसाद को ऑनर करना है। उसको मन में ये नहीं सोचना कि ये भोजन है या ये दाल भात है, उसको केयर करने के लिए जितना हम अपनी प्लेट में लें उतना ही प्लेट में लें जितना हम खा सकते हैं और उसको पूरा करके उठें, जिससे कि उसका वेस्टेज नहीं हो। जो बृहद भागवत अमृता में उसकी कथा आती है गोप कुमार की, गोप कुमार को एक राज्य का राजा बना दिया गया था और वो बहुत भगवान की सेवा में संलग्न रहता था। लेकिन जब अगली बार नारद मुनि आए, उन्होंने पूछा कि हाउ हैप्पी आर यू, आप खुश हो यहां? कि नहीं, मैं खुश नहीं हूं, ये तो राजा बना है, सारा दिन भगवान की सेवा करता है, डिवोशनल सर्विस करता है, जो तेरे को चाहिए, तू अभी खुश क्यों नहीं है? और क्या चाहिए तेरे को? कि यहां लोग ऐसे हैं, महाप्रसाद देता हूं वो आधा खा के छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, इसलिए मुझे नहीं रहना यहां। तो नारद मुनि तो जा जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद को कभी कंटेमिनेटेड नहीं माना जाता, झूठा भी खा लेते हैं क्योंकि वो महाप्रसाद है। झूठा भोजन नहीं खाते, झूठा महाप्रसाद, क्योंकि वो महाप्रसाद है, उसको फेंका नहीं जाता, और फिर भी जो बचे उसको सुखा लेते हैं। वो क्या बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाँ, दिन माल्या, वो सूखे चावल बचा के उनको उसमें पैकेट में भर भर के उसको बेचते हैं वहां पे। बहुत अच्छा प्रसाद होता है। कितने लोग यहां जगन्नाथपुरी गए, लेके आए थे अपना वो प्रसाद वहां से। जो लोग नहीं गए, अगली बार जाना तो वहां से वो सूखे चावल का ड्राइड राइस, कुछ और भी नाम है उसका, हिंदी में हम क्या कहते हैं उसको, सत्तू कहते हैं? सत्तू नहीं, सत्तू दूसरा होता है, यानी कुछ और भी नाम है उसका हिंदी में या किसी लैंग्वेज में। तो श्रील प्रभुपाद इस पर्पट में महाप्रसाद की इंपॉर्टेंस का मुद्दा उठा रहे हैं कि डिवोटीज शुड बी ऑलवेज केयरफुल, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद उतना ही लो जितना खाया जाए, और कभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ भी गया तो उसको खा के निपटा लो, नहीं तो उसको बांध के घर ले जाओ और नेक्स्ट मील में उसको खा लो। मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारियों के लिए ये काम मुश्किल है कि कहां ले जाएंगे, कहां रखेंगे, और पहले ही इतनी तपस्या करनी पड़ती है, छह छह मील तो पहले ही भगवान को ऑफर करके यहां मिलते हैं। तो देयर इज ऑलवेज फ्रेश फूड इन द हरे कृष्ण टेम्पल, ऑलवेज फ्रेश प्रसादम, नेवर हैव टू ईट लेफ्ट ओवर्स, बचा हुआ प्रसाद कभी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा फ्रेश प्रसाद ऑल्टर से आता ही रहता है। ठीक है,
एक दो क्वेश्चन राजा का बताया,
किसका
पहला पास टाइम बताया था आपने, अद्वैताचार्य का।
हाँ,
राजा थे जिन्होंने अद्वैताचार्य को फोर्स
राजा। हाँ हाँ,
तो हालांकि उनको पता नहीं था कि महाविष्णु है, वो तो दुर्गा के उपासक थे, तो उन्होंने एक भाव से उनको बोला। कभी कभी ऐसा लगता है कि ना जाने में हमसे अपराध हो जाते हैं, जिससे सुधार मिलती है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि राजा को दुर्गा का जो प्रकोप जाना पड़ा, तो खिलाफ उनको ये ज्ञान नहीं था कि महाविष्णु है। तो कभी कभी अनजाने में भी ऐसे अपराध हो जाते हैं, कैसे बचे।
नहीं, अनजाने में अपराध होने को भगवान कभी स्वयं इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये भगवान की लीला है, ये एक लीला है जिससे कि हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वास्तव में राजा ने अगर जो ऑनेस्ट मिस्टेक किया है तो उसको इतना ज्यादा प्रकोप सहना नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है वो उस रूप में किसी पिछले जन्म के पाप को सह रहा हो। बिकॉज ऑनेस्टली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यू मेक एन ऑनेस्ट मिस्टेक, यू शुड नॉट बी सो सिवियरली पनिश्ड। इफ यू मेक अ नोइंगली यू मेक अ मिस्टेक, दैट्स अ सिवियर, दैट डिजर्व्स अ सिवियर पनिशमेंट। तो जो छोटी मोटी गलती कभी नादानी से हो जाती है उसको भगवान इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन गलती तो गलती ही है। ठीक है,
महाप्रसाद सिर्फ जगन्नाथपुरी में गीता नहीं होता है, वैसे भी आपको एक महाप्रसाद गीता दिया जा सकता है।
वो लोकल कल्चर है, वैसे यहां भी नहीं होता, लेकिन वहां पे उसको लोग उस कल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। यहां हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते। जो महाप्रसाद झूठा हो उसको झूठा मानते हैं। हाँ, लेकिन नहीं करने से अच्छा है। हमारा एक मंदिर है विदेश में, उसका नाम है न्यू जगन्नाथपुरी धाम। दे फॉलो द सेम सिस्टम। और कोई आपको प्रश्न क्या है? मुझे लगता है आप उत्तर तो खुद दे रहे हो। मुझे प्रश्न कम और उत्तर ज्यादा नजर आ रहा है। देखो, बात ऐसी है कि हम जो बात करते हैं वो शास्त्रोक्त करते हैं, और जो हमें हमारे गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने बताया उसके बेसिस पे करते हैं। हम अपने मन से कोई बात नहीं करते, अपने मन से कोई बात बनाते नहीं। उनकी टीचिंग्स के ऊपर हमारे लेक्चर्स, रियलाइजेशन, जो कुछ भी हम करने की कोशिश करते हैं उस पर आधारित हैं। तो श्री प्रभुपाद का कथन ऐसा है, उनका सारांश ऐसा है कि ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण तो है, लेकिन उसको ये क्लेम करने के लिए कि हां मैं ब्राह्मण हूं, उसको गुण और कर्म से भी ब्राह्मण होना पड़ेगा। केवल जन्म से ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम कभी किसी ब्राह्मण का अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर जो कोई ब्राह्मण का अपमान करता है वो निंदनीय है, लेकिन अगर जो आपको मेरे कुछ कहने से ऐसा लगा कि मैं ब्राह्मणों का अपमान कर रहा हूं तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। हाँ, लेकिन वो ब्राह्मण को गुण और कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए, दैट्स इट, पीरियड। उसके आगे कुछ है ही नहीं। केवल जन्म से ब्राह्मण होना और अपने आप को ये क्लेम करना कि मैं ब्राह्मण हूं मेरे आगे झुको, या कोई झुक रहा है तो उसको आशीर्वाद दो, वो अच्छा नहीं है। अगर आप गुण और कर्म से भी ब्राह्मण हो बहुत अच्छा है। आई बात सुनिए, पूरी तरह से नहीं आई, ठीक है? कुछ गलत काम है। कुछ मन में है अभी आपके, गुंडी पूरी खोली नहीं है। और क्यों, भगवद गीता का प्रमाण अनफ नहीं है? आपको भागवत नहीं चाहिए, भगवद गीता का प्रमाण अनफ नहीं है? हाँ, या दैट इज, वो दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है, नॉट क्लियर कट, रोमहर्षण होता है। एनी अदर क्वेश्चन महाराज? Navi, yes.
Narration of King Navi. He was not a pure devotee.
Yes.
Neither were his brahmanas pure devotees.
श्रीमद् भागवतम में हमें कथन मिलता है राजा नाभि का, राजा नाभि शुद्ध भक्त नहीं थे।
But his brahmins, his staff of brahmins, they performed the jagna because Maharaj Navi wanted to have the Supreme Lord as his son.
फिर भी महाराज नाभि ब्राह्मण नहीं थे, परंतु फिर भी उनके जो पुत्र थे वे परम पुरुषोत्तम भगवान थे।
So then, more or less by surprise, they weren't expecting, but Lord Vishnu personally appeared in the arena.
जो बहुत आश्चर्यचकित बात है, वो इस चीज की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, परंतु जो भगवान विष्णु है वो जहां यज्ञ हो रहा था वहां पे प्रकट हुए।
I scrutinized the verses of that chapter very carefully and the purports by Srila Prabhupada also. With a fine tooth comb, I went through over the verses and the purports also.
महाराज बता रहे हैं, मैंने उस अध्याय के जितने श्लोक हैं और प्रभुपाद द्वारा दिए गए तात्पर्यों को बहुत गहराई से अध्ययन किया है।
Absolutely nothing in either the purports or the verses to indicate that Maharaj Navi or the Brahmins were pure devotees. Nothing. There's no indication whatsoever that they were pure devotees. They were, highly placed Brahmanas, and he was a Kshatriya. Nothing, not one word is there that either the king or the Brahmanas were pure devotees. Not one word indication by either Prabhupada or the Shlokas.
किसी भी श्लोक या तात्पर्य में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता जिसमें यह बताया हो कि ब्राह्मण या किंग नाभि एक शुद्ध भक्त हैं। हालांकि वो ऊंचे स्तर के ब्राह्मण थे और जो नाभि के राजा नाभि एक क्षत्रिय थे, परंतु कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो शुद्ध भक्त हैं।
But when Lord Vishnu suddenly appeared and when he appears in the arena, generally he gives a speech.
जब भगवान विष्णु प्रकट हुए जहां पे यज्ञ हो रहा था तो उन्होंने सबको कहा।
His speech that he gave was very, very important.
जो उन्होंने शब्द कहे वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
He told all the assembled citizens and sages and all the VIPs.
वहां पे उपस्थित सभी लोग, सभी ऊंचे वर्ग से जितने लोग आए थे उन्होंने सभी को कहा।
You must know, he declared boldly, that the Brahmanas are my very self.
उन्होंने डंके की चोट पे कहा, आप सबको ये जानना चाहिए कि ब्राह्मण मुझसे अभिन्न हैं।
Even though they were pure Brahmins but not pure devotees, still he is declaring boldly, they are my very self.
हालांकि वो शुद्ध ब्राह्मण थे परंतु शुद्ध भक्त नहीं थे, परंतु फिर भी भगवान ऐसा कह रहे हैं तुम इन्हें मुझसे अभिन्न जानो।
So here we see the principle of, it is not that he was preaching Mayavadi philosophy.
तो हम यहाँ पे सिद्धांत को जानना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भगवान मायावाद का प्रचार कर रहे हैं।
He was preaching Sakshat Dharitvena Samasta Shastra.
जो इस सिद्धांत को वो प्रस्तुत कर रहे हैं, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्र।
It's also very important evidence that narration from the Bhagavatam, also very important evidence that the Sakshat Dharitvena Samasta Shastra, that the Supreme Lord Himself does not even indicate that it must be Mahabhagavat or Uttama Adhikari. So this is very important in relation to ISKCON because there are those who say that the guru must be Udumarakari or Mahabhagi. It is not supported by this pastime. It is not supported by this pastime because Lord Vishnu, there's nothing to show that the brahmanas of the king were either Udumarakari or Mahabhagi. Rather, they were highly advanced souls because Maharaj Nabi, he qualified somehow or other to have Lord Rishabhdev as his son.
यहाँ पे भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण दे रहे हैं कि साक्षात हरित्वा होने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी को उत्तम अधिकारी होना चाहिए या बहुत ही महाभागवत होना चाहिए या वो ब्राह्मणों को भी अपने से अभिन्न बता रहे हैं.
This is very strong evidence about the position of Brahmas or to speak of Vaishnavas.
तो ये बहुत ही सशक्त प्रमाण है जो ब्राह्मण की स्थिति को बताता है. अभी वैष्णव की तो बात ही क्या करें.
The Vaishnavas are always considered superior to the Brahmanas.
जो वैष्णव हैं, वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ माने जाते हैं.
Evidenced by that famous debate when Srila Bhaktivinoda Thakur was ill.
तो ये हमें प्रस्तुत होता है जब बहुत ही प्रसिद्ध डिबेट से जब भक्ति विनोद ठाकुर बीमार थे.
So he sent Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to a gathering of Brahmanas.
तो उन्होंने भक्तिसिद्धांत महाराज को ब्राह्मणों के साथ तर्क करने के लिए भेजा.
And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur at that time completely smashed the whole smarta Brahman conception and irrefutably established that the Vaishnav is superior to the Brahman even.
जो भक्तिसिद्धांत महाराज है उन्होंने बहुत ही सशक्त तरीके से इस सिद्धांत को उन्होंने प्रकट किया कि वैष्णव की जो स्थिति है वो ब्राह्मणों से ऊपर.
थैंक यू महाराज. I understand that you were making a comment, there wasn't a question there. I understand that Maharaj is making a comment, there is not asking a question. Thank you, Maharaj. Any other questions or comments? Jagadguru Srila Prabhupada ki. Shri Shri Gaur Nitai Bhagwan ki. Krishna Balaram ki. शिशिराधिक राधा राधिका रमान की निताय गौर प्रेमानंदे.